ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಕೆ ಇಸ್ ಬೇಹದ್ ಘರ್ ಮೇ ಆಪ್ ಸಭಿ ಯೋಗ ತಪಸ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಯೋಗ ಕೆ ಗಹನ ಅನುಭವ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಮಯ ನಿಕಾಲ್ ಕರ್ಕೆ ಆಯೆ ಹೈ. ಆಪ್ ಸಭಿ ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಹೈ, ಸ್ವಾಗತ್ ಹೈ. ಪ್ರಕೃತಿ ಭೀ ಆಪ್ಕಾ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ ರಹಿ ಹೈ. ಕಲ್ ಶಾಮ್ ಸೇ ಚಾರ್ ಬಜೆ ಸೇ ಅಭಿ ತಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ಔರ್ ಐಸಿ ಫುಹಾರೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ, ಬಾದಲೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಯೋಗ ತಪಸ್ಯಾ ಕಾ ಅಪ್ನಾ ಹೀ ಆನಂದ ಹೋತಾ ಹೈ. ಜುಲಾಯಿ ಅಗಸ್ತ್ ಮಾಸ ವಿಶೇಷ ತಪಸ್ಯಾ ಕೆ ಮಾಸ ಹರ್ ವರ್ಷ ಹಮ್ ಸಬ್ ಮನಾತೆ ಹೈ. ಸಬ್ ಜಗೆ ಭಟ್ಟಿಯಾ ಚಲ್ತಿ ಹೈ, ಮಧುಬನ್ ಕೆ ಭೀ ಸಭಿ ಸ್ಥಾನೋ ಪರ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಿ ತಪಸ್ಯಾ ಚಲ್ ರಹಿ ಹೈ. ಔರ್ ಐಸೆ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ಯೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಲಾ ಹೈ. ಜರೂರ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚೆ ಅಚ್ಚೆ ಯೋಗ ಕೆ ಗಹರೆ ಅನುಭವ ಕರೆಂಗೆ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಾಬಾ ನೇ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೋ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಆಸನ್ ದಿಯಾ ಹೈ. ಕೋಯಿ ಭೀ ತಪಸ್ವಿ ತಪಸ್ಯಾ ಆಸನ್ ಪರ್ ಬೈಠ ಕೆ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಔರ್ ಹಮ್ ಸಬ್ಕಾ ಆಸನ್ ಬಹುತ್ ಗುಪ್ತ ಹೈ. ಜೊ ಆತ್ಮ ಇಸ್ ಭ್ರಕುಟಿ ಕಿ ಗುಫಾ ಮೇ ಉಸ್ ಆಸನ್ ಪರ್ ವಿರಾಜಮಾನ್ ಹೈ. ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಆಸನ್ ಹೈ, ಕಮಲ್ ಪುಷ್ಪ ಕಾ ಆಸನ್. ಕಮಲ್ ಪುಷ್ಪ ಕಿತ್ನಾ ನ್ಯಾರಾ ಔರ್ ಪ್ಯಾರಾ ರಹತಾ ಹೈ. ತೋ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ರಹತೆ ಹೈ, ಜಿತ್ನಾ ಅಪ್ನಿ ನ್ಯಾರಿ ಪ್ಯಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ರಹೆಂಗೆ, ಇಸ್ ಆಸನ್ ಪರ್ ರಹೆಂಗೆ, ಉತ್ನಾ ಸಹಜ ಬಾಬಾ ಕಿ ಯಾದ್ ನಿರಂತರ ಬನಿ ರಹೇಗಿ. ಅಗರ್ ಕಹೀ ಭೀ ಕಿಸಿ ಭೀ ಆಕರ್ಷಣ ಮೇ ಹಮ್ ಆಕರ್ಷಿತ ಹೋ ಜಾಯೆಂಗೆ, ತೋ ಭಟಕ್ತಿ ಹುಯಿ ಬುದ್ಧಿ ಏಕಾಗ್ರ ನಹೀ ಹೋ ಪಾಯೆಗಿ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಯೋಗ ಕಿ ಗಹರಿ ಅನುಭೂತಿ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೋ ಮೈ ಆತ್ಮ ಹೂ, ಮೈ ಏಕ್ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಹೂ, ಮೈ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾಶ ಪುಂಜ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು ಚಮಕ್ತಾ ಹುವಾ ಸಿತಾರಾ ಹೂ, ಇಸ್ ಶರೀರ ಸೇ ನ್ಯಾರಾ ಹೂ, ಅಭ್ಯಾಸ ಕರ್ನಾ ಚಲತೆ ಫಿರ್ತೆ ಉಠತೆ ಬೈಠತೆ, ಮೈ ಆತ್ಮ ಕರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರ್ ಶರೀರ ಕಾ ಆಧಾರ ಲೇಕರ್ ಕೆ ಕರ್ಮ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಯಿ ಹೂ, ಯೇ ಅಲಗ್ ಹೈ ಮೈ ಅಲಗ್ ಹೂ. ಜಬ್ ಆಪ್ ಯೇ ಅನುಭವ ಕರ್ನೆ ಲಗೆಂಗೆ ಕಿ ಆತ್ಮ ಔರ್ ಶರೀರ ದೋನೋ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಹೈ, ತಬ್ ಜೊ ಯೋಗ ಕಿ ಗಹರಿ ಅನುಭೂತಿ ಹೈ, ಜಿಸ್ಕೋ ಆಜ್ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಹಮೇ ಕಹಾ ಗಯಾ ಅಶರೀರಿಪನ್ ಕಿ ಅವಸ್ಥಾ. ಅಶರೀರಿ ಕಿಸ್ಕೋ ಕಹತೆ ಹೈ, ಏಕ್ ಹೈ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅವಸ್ಥಾ, ಏಕ್ ಹೈ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅವಸ್ಥಾ, ಏಕ್ ಹೈ ಅಶರೀರಿ ವ ವಿದೇಹಿ ಅವಸ್ಥಾ. ಹಮ್ ಸಬ್ ಕರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರ್ ಜಬ್ ಕರ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯೋ ಕಾ ಆಧಾರ ಲೇಕರ್ ಕೆ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ತೋ ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬನಾನೆ ಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಕಿ ಮೈ ಆತ್ಮ ಇನ್ ಕರ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯೋ ಕಾ ಆಧಾರ ಲೇಕರ್ ಕೆ ಕರ್ಮ ಕರ್ ರಹಿ ಹೂ, ಮೈ ಕರಾವನ್ ಹಾರ ಹೂ, ಯೇ ಕರ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಕರನ್ ಹಾರ ಹೈ. ಜಬ್ ಯೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಕ್ಕಾ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ, ಮೈ ಆತ್ಮ ಹೂ, ಯೇ ಆತ್ಮ ಹೈ, ಆತ್ಮಾಯೇ ಅಪ್ನಾ ಅಪ್ನಾ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಕರ್ ರಹಿ ಹೈ, ಯೇ ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಮೇ ಹರೇಕ್ ಆತ್ಮ ಅಪ್ನಾ ನಾಟಕ ಕರ್ ರಹಿ ಹೈ, ಖೇಲ್ ಕರ್ ರಹಿ ಹೈ, ತೋ ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಮೇ ಸ್ವಧರ್ಮ ಮೇ स्थित रहने से स्वतः नेचुरल बनती जाती है। अभी समय अनुसार हम सबको बाबा इसी बात पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं, बच्चे तुमने बहुत समय तक देह का आधार लेते लेते देह अभिमान में नेचुरल रहने की आदत ही बन गए हो। नेचुरल कोई कहता नहीं देह अभिमान में आओ, नेचुरल हो गया है बोलना चलना खाना पीना बात करना, जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसके अंदर फुल देह अभिमान है। और बाबा अपने बच्चों को इस थोड़े समय में देही अभिमानी आत्म अभिमानी बनाना चाहते हैं। मेहनत है, थोड़ी अभ्यास करने की आवश्यकता है। जितना हम इस भ्रकुटी आसन पर रह करके शरीर का आधार लेते हैं, शरीर से अलग होते हैं, ये प्रैक्टिस चाहिए। कर्म योगी स्थिति में रहने से आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव होने लगता है। लेकिन जब आत्मा अपने स्वधर्म में स्वरूप में स्थित होती है तो उसके चारों ओर एक बहुत प्रकाश का सुंदर पवित्रता का लाइट का ओरा तैयार होता है। प्रकाश का जैसे आभा मंडल बनता है, जब कोई दीप प्रज्वलित करते हैं तो दीप की लौ के चारों तरफ एक लाइट जो एक कार्व के तरफ दिखाई देती है, ऐसे ही जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं उतना हमारी अव्यक्त स्थिति डबल लाइट स्थिति फरिश्ता स्थिति बनने लगती है, बन जाती है। जो अभी दीदी कह रही थी कि फरिश्ता ड्रेस में रहना, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना, हम सब कर्मयोगी आत्माएं आत्म अभिमानी बनते बनते फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने लगती हैं। लेकिन उससे और ऊंची स्टेज, जब शरीर बिल्कुल भूल जाए, अशरीरी स्थिति का अनुभव हो, क्योंकि आत्मा जब इस कर्म क्षेत्र पर है तो बिना शरीर के वो नहीं रहती। जब तक ये शरीर है, आत्मा इसमें है, तो हड्डी मांस के शरीर के आधार से वो कई कार्य करती है, दिखाई भी देती है ये कर्म कर रहे हैं। लेकिन जब वो शरीर छोड़ती है तभी भी वो बिना शरीर के नहीं रहती, उसके साथ एक लाइट का सुंदर जैसे विचारधाराएं होती हैं वैसा उसका शरीर होता है, जिसको छाया का शरीर कहते हैं। कोई 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 बहुत शुद्ध पवित्र सफेद सफेद छाया दिखाई देती है तो उसके लिए कहते हैं फरिश्ते हैं, ये परियां हैं। और अगर वही छाया काली या डरावनी दिखाई देती है तो उसको कहते हैं भूत हैं, प्रेत हैं। तो हम सब आत्माएं जब इस शरीर में हैं तभी भी शरीर का आधार लेकर के कर्म करती हैं, शरीर के बिना नहीं रहती, और शरीर छोड़ती हैं तो भी वायुमंडल में भी लाइट के शरीर में छाया के शरीर में कर्म करती हैं, चलती हैं, दिखाई देती हैं। जब तक दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश करे तब तक वो छाया उसके साथ रहती है। लेकिन जो एक अशरीरी स्थिति है, जो निराकार शिव बाबा जिस स्थिति में सदा रहते हैं और वो जब इस शरीर में प्रवेश करते हैं तो अशरीरी से शरीरधारी बनते हैं, और जब शरीर से निकलते हैं तो अशरीरी बन करके निराकारी वतन में चले जाते हैं। आकारी वतन भी शरीरधारियों का ही है लेकिन वो लाइट का शरीर है, जिसको हम सब कहते हैं अव्यक्त वतन, फरिश्तों की दुनिया। वहां भी शरीर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन वो ये शरीर नहीं है, हड्डी मांस वाला शरीर नहीं है, वो एक लाइट का शुद्ध पवित्र शरीर आत्मा अपनी संपूर्णता के आधार से अनुभव करती है। बाबा ने हम सबको बीच बीच में ये बहुत सुंदर अभ्यास करने के लिए प्रेरणाएं दी हैं, बच्चे साकार तन में प्रवेश करो, साकार शरीर का आधार लो, कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ, फिर आकारी शरीर में चले जाओ, लाइट के शरीर में चले जाओ। और लाइट का शरीर भी जब छोड़ो तो निराकारी वतन में, परमधाम में, अशरीरी स्थिति में बाबा के घर का अच्छा अनुभव करो, जहां पर असीम शांति है, पवित्रता है, जहां सदा ही शांति का सागर, सर्वशक्तिमान हम सबके प्यारे पिता ज्योति बिंदु स्वरूप में, सर्वशक्तियों के संपन्न स्वरूप में निवास करते हैं। तो अशरीरी स्थिति माना आवाज से परे की स्थिति। अब आवाज से परे की दो स्थितियां हैं, एक हम मुख की आवाज की परे दुनिया से, जो हलचल है इस वायुमंडल में उस दुनिया की आवाज से परे हो जाते हैं, उससे न्यारे होते हैं। लेकिन उसके बाद अगर संकल्पों में भी कोई हलचल चलती है, आवाज चलती है, तो भी बाबा कहते हैं उस आवाज से भी परे। अभी आपको 3 दिन ये बहुत अच्छा अभ्यास करके देखना है कि आत्मा कितना समय संकल्पों को स्टॉप करके उस आवाज से परे जा सकती है। संकल्प तो इस कर्म क्षेत्र पर चलते ही हैं। बाबा ने उस दिन कहा, कोई कहे मन की शांति चाहिए, मन की शांति होती नहीं है, वो कर्म क्षेत्र पर है, उसने शरीर धारण किया है, उसके संकल्प तो चलेंगे ही। लेकिन उन संकल्पों में जो भाव है व्यर्थ का, जो भटकते हुए संकल्प है, उन संकल्पों को अगर हम एकाग्र कर लेते हैं और अपने शुद्ध संकल्प, शुद्ध स्मृतियों में रमण करते हैं कि मैं एक लाइट हूं, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं एक पाठधारी आत्मा हूं, मैं खेल खेलने के लिए इस नाटक में आई हूं, मेरा असली घर परम धाम है, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, इन गुणों का अगर हम चिंतन करते हैं और उसी स्वरूप में बाबा को सागर के रूप में अनुभव करते हैं, तो अनुभव के संकल्प चलते हैं, वो शून्य नहीं होते। लेकिन जब अशरीरी स्टेज हम कहते हैं, तो उस अशरीरी स्टेज में यहां के संकल्प सब मर्ज हो जाते हैं, मर्ज, और वहां के संकल्प शांति के, पवित्रता के, उनके मिलन के संकल्प थोड़े से बहुत धीमी गति के अनुभव में आते हैं, परमधाम की स्टेज है वो। तो हम सब आत्माएं बीच बीच में इस शरीर रूपी चोले को छोड़ने का अभ्यास, अभ्यास तो बहुत है, कई बार इसको छोड़ा है, कई नया लिया है, लेकिन रहते हुए इसको छोड़ें और इसमें प्रवेश करें, इसी में, दूसरे में नहीं, अशरीरी स्टेज। अब इसके लिए जैसे अगर कोई ड्रेस हमें पहनाई जाती है, हम पहनते हैं कोई ड्रेस और वो बहुत टाइट होती है, तो उसको उतारने में मेहनत लगती है, जल्दी जल्दी उतार के चेंज करना हो तो ड्रेस जल्दी नहीं उतरती। ऐसी आत्मा की ये जो ड्रेस है, इस समय बहुत टाइट हो गई है। किसमें टाइट किया, कैसे टाइट हो गई, संस्कारों के कारण, संस्कारों की टाइटनेस ने शरीर में आत्मा को जकड़ लिया है, इसलिए शरीरी बनने में मेहनत लगती है। कर्म करते गए, जो संकल्प उठा, जिस प्रकार से बुद्धि ने निर्णय किया, प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर कर्म कर लिया, और वो कर्म अगर बार बार हो गए तो वो कड़ा संस्कार बन गया, और वो इतना कड़ा संस्कार बन गया जो कहते हैं चाहता नहीं हूं, संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल जाते हैं, कर्म हो जाते हैं, मैं चाहता नहीं हूं, हो जाता है, संस्कार करवा देते हैं। अब ऐसे संस्कार चाहे किसी भी विकार के हैं, बुराई के हैं, बाबा ने मोटे मोटे रूप में तो 5 विकार बताए हैं, लेकिन उन 5 विकारों के अधीन होते होते जब इस अंतिम जन्म में बाबा कहता है इनको छोड़ो बच्चे, तो मोटे रूप से सब प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम इन विकारों पर जीत पाएंगे। सबने राखी बंधवाई बाबा से, प्रतिज्ञाएं की, संकल्प किए, भाई हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, काम विकार पर जीत प्राप्त करेंगे, क्रोध पर जीत प्राप्त करेंगे, ये जो छोटे उसके लोभ मोह अहंकार हैं उन पर भी विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन जो उनके बहुत सूक्ष्म रूप हैं, विकारों के जो बाल बच्चे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य, अलवेलापन, आवेश, आवेग, अनुमान, आसक्तियां, कहीं न कहीं झुकाव, लगाव, प्रभाव, बहुत सारे संस्कार, जिन संस्कारों से आत्मा अभी भी इस शरीर में टाइट है, जब इन संस्कारों की लोड ड्रेस हो जाएगी, माना इन संस्कारों पर हमारी विजय हो जाएगी, तब यह लूज ड्रेस वाली आत्मा, इजी रहने वाली आत्मा सहज अशरीरी बन सकेगी, इस शरीर को छोड़कर उस परम धाम घर की अनुभूति कर सकेगी। अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए। यही वास्तव में योग भट्टी में आने का मतलब हमारा यही है। तो आप मधुबन में आए हैं, स्थूल कारोबार नहीं है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, घर का काम भी नहीं है, माताओं को भोजन भी नहीं बनाना है, भाइयों को कोई नौकरी टोकरी या बिजनेस नहीं करना है, यहाँ आए हो एकांत में बैठ करके अपने स्वस्वरूप का अनुभव करके कैसे संस्कारों की जो टाइटनेस है उसको हम समाप्त करके बाबा के पास जाएं। अभ्यास करना बीच बीच में, ऐसा है ये अभ्यास अगर कोई एक घंटे में एक मिनट भी कर ले, एक मिनट, उसका प्रभाव बहुत समय तक रहता है। जो बाबा निरंतर योगी की बात कहता है, कई लोग कहते हैं निरंतर योगी कैसे बनेंगे, लेकिन वो निरंतर योगी बनने की अच्छी विधि है, अगर आप एक मिनट के लिए बहुत पावरफुल स्टेज में स्थित हो जाओ, अशरीरी बन जाओ, तो उसका जो प्रवाह है, जो उसकी अनुभूतियां हैं, वो कई समय तक, बहुत समय तक चलती रहती हैं। एक घंटे में, दो घंटे में भी एक पावरफुल बीज की स्थिति, वो निराकारी अशरीरी स्थिति का अच्छा अनुभव हो जाए। बाबा ने यहां तक भी मुरलियां चलाई हैं कि बच्चे 24 घंटे की थकावट को आप 3-4 मिनट की अशरीरी स्थिति से समाप्त कर सकते हो। 6 घंटे 8 घंटे की नींद लेने के बाद जो आराम का अनुभव होता है, वो अनुभव आप अशरीरी स्थिति में कर सकते हो 3-4 मिनट में भी। कितनी पावरफुल स्टेज होगी। हम योग तो करते हैं, बाबा के कमरे में बैठते हैं, मुरली के पहले योग करते हैं, नमाज शाम का योग करते हैं, जब समय मिलता है योग करते हैं, लेकिन क्या वो योग की वो स्टेज बनती है जिसमें बिल्कुल ये शरीर, ये देह, ये दुनिया, ये सब संबंध भूल करके मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, उस स्वरूप में स्थित होकर के मैं अपने परम धाम घर में बाबा से मिलन मनाऊं। परम धाम घर में शरीर नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई परिस्थितियां नहीं है, कोई साधन सुविधाएं नहीं है, मैं आत्मा हूं, अशरीरी आत्मा, जिसको बाबा एक बहुत अच्छे शब्दों में साकार मुरलियों में कहते हैं, आत्मा नंगी आई नंगी जाएगी, माना ये शरीर रूपी वस्त्र भी उसके ऊपर नहीं, ये वस्त्र हैं जब साकार शरीर में तो ये वस्त्र हैं, लेकिन जब आत्मा अशरीरी स्टेज में है तो वो इस शरीर से भी अलग है। उसका अनुभव बीच बीच में करने का, योग के बीच में, मुरली के बीच में, सेवाओं के बीच में, एक मिनट के लिए अशरीरी हो जाओ। बाबा ने, हमारी दादियों ने अभ्यास किया, आपको पता होगा 77 में, मैं मधुबन में ही था यहाँ, 71-72 से मैं मधुबन में हूँ, 77 में दादी प्रकाशमणि जी विदेश यात्रा पर गई, वर्ल्ड टूर पर गई, और वर्ल्ड टूर करते भी हुए उनको कुछ बहुत नई नई बातें टच हुई, प्रेरणाएं आई, इतनी दूर दूर बाबा के बच्चे बैठे हैं, योग कर रहे हैं, बाबा की पढ़ाई कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, अगर इतनी सब पवित्र आत्माएं जो कोने कोने में बैठी हैं वो बीच बीच में एक मिनट तस्सरीरी बन जाएं, तो उनके शांति के, उनकी पवित्रता के वाइब्रेशन, उनके प्रकंपन इस विश्व परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। सोचना उनकी विशाल बुद्धि की बात कर रहा हूं। वो यहां आई मधुबन में और हम सबको कहा कि संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक नियम बनाना है मधुबन में। सेंटर्स पर बाद में जाए, पहले मधुबन वाले करें, चलो अभी ट्रैफिक कंट्रोल करो। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल जो अभी गीत सुना आपने, ये संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करने की बात है। दिन में 5 बार ये गीत 78 में बजना शुरू हुए, 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30 बजे, 7:30 बजे, फिर रात को 9:30 बजे, ऐसे करके 5-6 घंटे, हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद ट्रैफिक कंट्रोल। इससे आत्मा एकदम चार्ज हो जाती है। अगर सच्ची दिल से कोई ने केवल काम रोक दिया फिर भी संकल्प चलते रहे, इधर उधर की बातें बुद्धि में घूमती रही, तो उसको ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कहते। ट्रैफिक कंट्रोल माना संकल्प भी शांत हो जाए, मैं आत्मा जो हूं जैसी हूं। अगर 3 मिनट के गीत में 1 मिनट भी ऐसी एकाग्रता आ गई, बिल्कुल सब कुछ भूल करके अपने स्वरूप का, बाबा के स्वरूप का, घर का चिंतन या शरीर स्थिति अगर 1 मिनट भी बना लिया, तो इससे बहुत बड़ी एनर्जी जमा हो जाएगी, थकावट दूर हो जाएगी, संकल्प बिल्कुल प्योर होते जाएंगे, निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी, कोई भी बात सामने आएगी उसका समाधान दिखाई देगा, कोई गलत विचारों से व्यक्ति सामने आएगा उसको भी आप परख सकेंगे। बहुत सारी शक्तियां इस अभ्यास से प्राप्त हो सकती हैं। केवल विकर्म विनाश हो रहे हैं, संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, यहां तक नहीं, लेकिन कई प्रकार से आत्मा बहुत सत्व प्रधान होने के कारण, स्वच्छ होने के कारण, शक्तिशाली होने के कारण ठीक ठीक जजमेंट कर लेती है। और इस कलयुग में अनेक परिस्थितियों के बीच में सुरक्षित रहने के लिए, समस्याओं पर मुक्ति प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए इस अभ्यास की बहुत बहुत आवश्यकता है। अगर हम सब यही अभ्यास करें, कोई मंत्र नहीं जप रहे हैं, कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, कार्य व्यवहार में होते जहां भी हैं, अपने मन को स्वस्वरूप में स्थित करके, टिका करके, और फिर परमधाम की यात्रा, यह शरीरी स्टेज है। तो दादी जी ने यह कार्यक्रम 78 में मधुबन से शुरू किया, अभी लगभग सभी करते हैं। आप लोग करते हो? जो करते हैं हाथ उठाओ, बहुत कम करते हैं, बहुत कम, क्योंकि सब अपने अपने कार्य में बिजी हो जाते हैं। और उसके बाद और भी एक एडिशन करवाई फिर दादी ने, कहा 3-4 घंटे के बाद करने से कभी कभी भूल जाता है, हर घंटे में 1 मिनट करो। अभी आप जहां जाएंगे, पांडव भवन, शांति वन, ज्ञान सरोवर, हर घंटे में 1 मिनट रिकॉर्ड बजता है शांति का, और उस रिकॉर्ड के ऊपर जो अभ्यास कर लेता है वो कितना शक्तिशाली बन जाता है। व्यर्थ को समाप्त करने का सबसे अच्छा साधन है, नहीं तो कभी भी ब्राह्मणों की ये कंप्लेन खत्म नहीं हो सकती, ये मुझे बहुत व्यर्थ आता है, बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। मैं योग तो करता हूँ, करती हूँ, मुरली भी सुनती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत परेशान करते हैं। अभी भी योग के गहरे अनुभव नहीं होते हैं, अभी भी विकारों को जीतने की युद्ध करनी पड़ती है। अगर इन सब से बचना है तो हम सबको बीच बीच में एक सेकंड संकल्पों को स्टॉप करके, जहां जितना समय हम अपने संकल्पों को टिका सकते हैं, अभ्यास करें। तीन स्टेजेस के संकल्प आते हैं। एक योग की स्टेज में कर्म योगी हैं, बाबा की याद है, बाबा से रूह रिहान है, बाबा करावनहार है, मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ, भगवान की छत्र छाया में पल रही हूँ, वो मुझे पढ़ा रहे हैं, वो मुझे पालना दे रहे हैं, वो मुझे श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। अपने आप से बातें करना, रूह रिहान करना, कैसी श्रेष्ठ जीवन है जो विकारों से, बुराइयों से, व्यसनों से बाबा ने इतना सुंदर जीवन दे दी, महान जीवन दे दी, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा। ये कौन सी याद है? ये कौन सी याद है? ये साकारी याद है। साकारी में जैसे साकार माता पिता के रूप में, भाई बहनों के रूप में बात करते हैं, रूह रिहान करते हैं, ये भी एक याद है। लेकिन इससे ऊपर याद है आकारी, फरिश्ते की स्थिति, लाइट की स्थिति, जिसमें ये रूह रिहान नहीं है, लेकिन बाबा से शक्तियां मिल रही हैं, सर्व शक्तियों का वर्षा मिल रहा है, वरदान मिल रहे हैं, अव्यक्त रूप में बाबा की बहुत शक्तिशाली किरणें करंट के रूप में मिल रही हैं, मैं उनके समान लाइट की ड्रेस में हूँ, फरिश्ता ड्रेस में हूँ, और फरिश्ता ड्रेस में बाबा के साथ इस प्रकृति और व्यक्तियों की सेवा के निमित्त हूँ। बहुत बड़ा कार्य बाबा ने अपने बच्चों के कंधों पर रखा है, वो है इतने बड़े कलयुग को परिवर्तन करने का कार्य। साधारण काम नहीं है, छोटा मोटा काम नहीं है। इतने बड़े विश्व में प्रकृति इतना तमो प्रधान है, इतनी तमोगुणी रूप उसका आप देख रहे हो, कहीं अति बरसात पड़ रही है, कहीं बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं कुछ भी, कोई भी तत्व कब कौन सा खेल करेगा कोई भरोसा नहीं है। पांचों तत्व तमोगुणी कलयुग के अंत में सब अपना उग्र रूप दिखा रहे हैं। और व्यक्ति कैसे हैं, जिनके अंदर सब विकार फुल भरे हुए हैं, बॉडी कॉन्शियस में अभिमान तो कूट कूट के भरा हुआ है, कोई थोड़ा सा भी कुछ अच्छा करता है, मैं मेरा जैसा कोई नहीं। ऐसे समय में हम सबको बाबा के राइट हैंड बन करके इनकी सेवा करनी है, इनको परिवर्तन करना है, इस तमोगुण को सतोगुण में लाना है, व्यक्तियों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाना है। हम सबके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा साकार में नहीं रहो, साकार में कर्म किया, श्रेष्ठ कर्म किया, अपना भाग्य बनाया, लेकिन अब आकारी स्वरूप में मेरे पास आओ और मेरे साथ विश्व कल्याण की सेवा करो, फरिश्ते ड्रेस से सेवा करो। वो सूक्ष्म सेवा मनसा सेवा कहलाती है, जिसमें हम सब की भावनाएं बड़ी शुद्ध हैं, पवित्र हैं, और एक लाइट के शरीर में जैसे हम पूरे ही वायुमंडल में विचरण करते हुए जहां जिसको जिसकी आवश्यकता है वहां मदद करते, वो फरिश्ता स्टेज, वो आकारी स्टेज है। जो आज अव्यक्त बाबा अव्यक्त वतन में रह करके इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, आप वंडर देखो। साकार में जब बाबा 69 तक थे, बाबा के सामने विदेश में एक भी सेंटर नहीं था, भारत के अंदर भी बाबा कहते थे 108 सेंटर खुल जाएंगे, तो उस समय भी 108 सेंटर नहीं थे। लेकिन बाबा के अव्यक्त होने के बाद, लाइट में जाने के बाद, समान बनने के बाद, जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कंबाइंड हो गए, आकारी स्वरूप में चले गए, उसके बाद कितनी सेवाओं की स्पीड बढ़ गई और बाबा ने क्या नहीं किया, कहां था यज्ञ और कहां पहुंचा दिया। पूरे विश्व के अंदर हर कोने में, हर स्टेट में, हर जिले में बाबा के, भारत में भी केंद्र खुले और विदेश में भी हर देश में केंद्र खुले। करीब 140-145 देशों में बाबा की सेवाएं चल रही हैं। कौन करा रहा है? आत्माएं कर रही हैं क्या? करण करावनहार बाबा करा रहा है, फरिश्ते स्वरूप से करा रहा है। और सिर्फ ऊपर से करा नहीं रहा है, जहां जो बच्चा दिल से कहता है मेरा बाबा, उसको अपने साथ की अनुभूति कराता है। करते हो अनुभव? कहीं भी रहो, कैसी भी हालत में हो, सिर्फ दिल से बहुत सच्चे मन से कहो मेरा बाबा, और हाजिर हो जाता है। ये फरिश्ते स्वरूप की सेवा है। और वो बाबा कहता मेरे बच्चों को भी ऐसी सेवा करनी चाहिए। और उसके ऊपर की स्टेज जो है वो बहुत शक्तिशाली स्टेज है, जो अगर आप 5-10 मिनट भी उस स्टेज का अनुभव कर लो, बहुत सार्थ बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि बन जाएगी, ठीक ठीक निर्णय करने लगेगी। और अशरीरी स्टेज से आप कर्मातीत स्टेज को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि पहले कर्म इंद्रियों पर जीत हो जाएगी। जब कर्म इंद्रियों पर जीत होगी तो कोई विकर्म नहीं बनेंगे, विक्रमाजीत बन जाओगे। पाप कर्म तभी तक हो रहे हैं, विकर्म तभी तक आत्मा से हो रहे हैं, जब तक उसने अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त नहीं की है। अशरीरी स्टेज में रहने से कर्म इंद्रियां अपने आप शीतल हो जाती हैं, उत्तेजनाएं खत्म हो जाती हैं। ब्रह्मा बाबा ने बहुत गहरा अभ्यास किया, अशरीरी स्टेज को ही नाम दिया निराकारी स्टेज। और निराकारी स्टेज होते होते वो निर्विकारी बन गए, सब कर्म इंद्रियां उनके कंट्रोल में आ गई, विकर्म विकार समाप्त हो गए। और विकर्म विकारों का कोई अहंकार ना आ जाए कि मैंने विकर्मों पर विजय प्राप्त कर ली, मैंने विकारों पर जीत प्राप्त कर ली, इसलिए कह दिया निरहंकारी। तो हम सब बाबा के बच्चे अशरीरी स्टेज का अभ्यास करते करते 5-10 मिनट जितना समय कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कुछ बातों की बहुत आवश्यकता है। अभी तक हम लोग बहुत सारे विस्तार में फंसे हुए हैं। संबंधों का विस्तार कितना है, कितने संबंध बनाए हुए हैं, संपर्क कितने हैं, सेवाएं कैसी कैसी कर रहे हैं, साधन कितने जुटाए हुए हैं, परिस्थितियां कैसी कैसी, हिसाब किताब कैसे कैसे हैं। जब तक इन सब को समेटा नहीं है, समेटने की शक्ति नहीं है, तब तक अशरीरी स्थिति का अनुभव नहीं होगा। समेटना होगा, विस्तार को समेटना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने पूरे विस्तार में, खूब विस्तार था, लेकिन बुद्धि को समेट लिया, सेवाओं को रोका नहीं, सेवाओं को कम नहीं किया, लेकिन जहां जहां उनकी बुद्धि जाती थी उसको स्टॉप कर लिया। ये काम नहीं, बाबा कराने वाला है, बाबा का काम है, बच्चे कर लेंगे। अपने को किनारा किया। जब अशरीरी स्टेज हमें बनानी है, उस स्टेज से आत्मा को कर्मातीत स्थिति तक ले जाना है, संपन्नता को प्राप्त करना है, तो हम सबको पहले सब बातों से समेटना है। विस्तार को सार में समेट लो। जहां जहां बुद्धि आपकी बहुत जाती हो, अब वो बाबा को हवाले करो, समेटो। समेट करके मैं जो हूं, जैसा हूं, उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं एक लाइट हूं, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं एक पार्ट बजाने के लिए आई हूं, मैंने पार्ट बजाया, पार्ट पूरा हुआ, मैं अपने स्वरूप में स्थित होकर के घर की यात्रा पर हूं। यह शरीर स्टेज है। दूसरी बात, चेक करना कहां पर किन किन बातों में मेरा लगाव है। लगाव की निशानियां सब समझते हो, जहां भी कोई लगाव होगा, आकर्षण होगी, वो चीज अपनी तरफ खींचेगी, बंधा हुआ है वो व्यक्ति। कई आत्माओं का संबंधों में बहुत लगाव है, देह में लगाव है, संबंधों में लगाव है, संस्कारों में लगाव है या साधनों में लगाव है। लगाव वाली बंधन में बंधी हुई आत्मा अशरीरी नहीं बन सकती, योग का पावरफुल योग का अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए पहले आपको सब प्रकार की लगाव की सूक्ष्म रस्सियों को चेक करना है, और चेक वही कर सकता है जो बहुत एकांत में जाएगा, एक की याद में, एक के अंत में। जितना आप एकाग्र होकर के बैठेंगे आपको पता चलेगा मेरा कहां पर किस चीज में लगाव है, कौन सी चीज मुझे आकर्षण कर रही है। कई बार मेरा अपनी विशेषताओं में भी लगाव होता है, मेरी ये विशेषता है, मेरी ये सेवाएं हैं, सेवाओं में लगाव हो जाता है, मेरे ये संबंध है, संबंधों में लगाव हो जाता है, मेरी ये वस्तुएं हैं, ये मेरा रुमाल है, इस रुमाल में भी लगाव हो जाता है। इतना सूक्ष्म लगाव है जो आत्मा कहीं न कहीं बार बार खींच करके चली जाती, बंध जाती है। जब तक हमने लगाव की रस्सी को चेक करके उसको खत्म नहीं किया है तब तक आत्मा उड़ नहीं सकती, अशरीरी नहीं बन सकती। इसलिए ऐसा समय जब मिलता है, आते हो बाबा के घर में, कई तो पहली बार ही आए होंगे, नए भी होंगे, लेकिन एक बहुत ऊंची बात जो सुन रहे हो उसको अनुभव करके देखना, मैं आत्मा सब लगाओं से मुक्त हो जाऊं, न देह में लगाओ, न संबंधों में लगाओ, न विशेषताओं में लगाओ, न अपने ही संस्कारों में लगाओ, मैं आत्मा मुक्त स्टेज का अनुभव करूं। अब स्वतंत्रता दिवस है, लोग बड़ा धूमधाम उमंग उत्साह से मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल आजादी के हो गए, लेकिन क्या हम आजाद हैं? ब्रिटिश से आजाद हो गए लेकिन संस्कारों से कहां आजाद हुए हैं, विकारों से कहां आजाद हैं, व्यसनों से कहां आजाद हैं? जब तक आजाद नहीं है तब तक उस सच्चे सुख का अनुभव हम नहीं कर सकते। अगर कोई आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहती है तो उसे आजाद होना होगा, स्वतंत्र। हमारा तंत्र ऐसा बने जो आत्मा स्व से बिल्कुल अनुभव करे, किसी बंधन में वो बंधी हुई नहीं है। ऐसे हम नियम पालन करें, ऐसे हमारे तंत्र हों, ऐसी हमारी विधियां हों, जिन विधियों के आधार से हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें। मैं आत्मा स्वतंत्र हूं, कोई बंधन मुझे खींच नहीं रहा है। जब ऐसी बंधन मुक्ति स्थिति का अनुभव हो तब मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले हम मास्टर मुक्तिदाता बन सकते हैं। इतनी आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, जीवन मुक्ति बहुत कम है जो चाहेंगे कि हम जीवन में रहते मुक्त रहें, लेकिन हर एक चाहता है अरे मुक्ति धाम में चले जाएं, वो तो कहते मोक्ष मिल जाए, जन्म मरण के चक्कर से ही छूट जाएं, ऐसी मुक्ति चाहते हैं हर एक। बाबा कहता है ऐसी मुक्ति तो कोई को भी नहीं मिलती, उसको पार्ट में पूरे कल्प में एक बार तो आना ही पड़ेगा, लेकिन हम बाबा के बच्चे उस स्टेज का अनुभव करते हैं कि हम जीवन में हैं, शरीर में है, कर्म क्षेत्र पर है, लेकिन मुक्त है, न कोई भी देह का बंधन खींच रहा है, न संबंधों का बंधन खींच रहा है, न अपने संस्कारों का बंधन खींच रहा है, मैं आत्मा अपने स्वस्वरूप में स्थित हूं। तो सब सूक्ष्म लगावों की रस्सियों को जरूर चेक करना, जहां भी हो, जिधर भी हो, उसकी निशानी बता दी, वो खींचेगा, उस तरफ झुकाव होगा, वो अच्छा लगेगा। क्या कहते हैं परसों बाबा के वरदान में था स्लोगन में, इच्छा नहीं है अच्छा लगता है, ये भी एक झुकाव है, अच्छा लगता है, ये व्यक्ति अच्छा लगता है, ये वस्तु अच्छा लगती है, ये बहुत अच्छे स्वभाव वाला सहयोगी भाई है, ये बहन है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छाई ग्रहण करो, अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई की तरफ प्रभावित नहीं होना, नहीं तो फंस जाओगे, बंधन बन जाएगा, वही अच्छा लगने लगा, बाकी सब बेकार लगेंगे। ये बंधन है, इस बंधन को काटना है। इसलिए बाबा हम बच्चों को बंधन मुक्त बनाने के लिए आए हैं, बंधन मुक्त बच्चे बन जाए। जब बंधन मुक्त बनोगे, कर्म बंधन मुक्त बनो, कर्म करो। कर्म करने की बाबा ने छुट्टी दी है, लेकिन कर्म बंधन न बन जाए, इसलिए कर्म करो और समर्पित करो बाबा के आगे। मैंने जो किया वो कितने लोगों को से सुख मिला, कितने लोगों को फायदे हुए, कितने लोगों ने उसकी प्रशंसा की, अगर इस प्रकार की भी इच्छा है तो वो कर्म बंधन बन जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा है, बच्चे कर्म क्षेत्र पर हो, कर्म करो, लेकिन कर्तापन का भान ना रहे, कराने वाला करा रहा है, हम सब उसके निमित्त बच्चे उसको समर्पित हैं, उसने जो करा लिया, उसने कराया, उसको समर्पित कर दो। फल की इच्छा रखने वाला, गीता में भी कहा है, हे अर्जुन तुम कर्म कर, फल की इच्छा नहीं रख। हम सब बाबा के बच्चे कर्म करें, उसके परिणाम की, उसके फल की इच्छा न रखें। अगर वो इच्छाएं हैं तो इच्छाएं अपनी तरफ खींचेंगी और इच्छाएं कभी भी अच्छा बनने नहीं देंगी। इसलिए हम ब्राह्मणों को बाबा ने स्लोगन दिया है, संगम युग पर एक एक मेरा बच्चा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करे। कोई इच्छा नहीं, बाबा आपने सब इच्छाएं पूरी कर दी, सब कुछ दे दिया, आपको पाया, आप मिल गए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। इतनी तृप्त आत्मा है, भरपूर आत्मा है, संतुष्ट आत्मा है, तब कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कोई का मान शान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। और जब सब आकर्षण समाप्त होंगे, लगाव झुकाव समाप्त होंगे, तब आत्मा निर्बंधन बन करके सेकेंड में इस बॉडी से, इस शरीर से न्यारी हो सकती है, अशरीरी बन सकती है। ऐसा अभ्यास हमारे बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने, तब वो कर्मातीत बने। ऐसा अभ्यास हमारी दादी जी ने किया, तब वो कर्मातीत बनी। सब कुछ होते हुए भी कोई चीज ने आकर्षित नहीं। बाबा का इतना बच्चों से प्यार, इतनी पालना बाबा ने दी, बच्चों को इतना योग्य बनाया, लेकिन अंत में कोई, सब सामने होते हुए भी कोई ने अपनी तरफ नहीं खींचा। क्या अभ्यास था? न्यारे और प्यारे, सब अपने हैं, कोई अपना नहीं है। वो स्टेज चाहिए, परिवार में रहो, समाज में रहो, संबंध निभाओ, लेकिन कोई भी मेरा नहीं, मैं तो बाबा का, बाबा मेरा। जिसने इस पाठ को अच्छी तरह से पक्का कर लिया है, वो संबंधों के लगाव से अपने को मुक्त कर सकता है। तो जब लगाव से मुक्त हैं, कर्म बंधनों से मुक्त हैं, संस्कारों की टाइटनेस को समाप्त किया है, बहुत इजी नेचर बनाई है, लाइट रहते हैं, जो कुछ करते हैं कहीं पर भी मेरेपन का बोझ नहीं है, ये सब बाबा तेरा है, ये सब तेरा है, तू कराने वाला है, जहां मेरा पनाए बाबा को समर्पित करो, बाबा ये सब तेरा है, लाइट हो जाओगे, हल्के हो जाओगे। और ऐसी हल्की स्टेज में रहने वाला जब चाहे शरीरी स्टेज का अनुभव कर सकता है। ऐसे नहीं, हम अच्छे माहौल में हैं, अच्छी स्थिति है, अच्छे वातावरण में शरीरी बन गए, और अभी अभी कुछ नेगेटिव हो जाए, कोई गलत हो जाए, और उस समय कहें एक मिनट में आ जाओ मेरे पास, बाबा का डायरेक्शन मिले, बच्चे छोड़ो इस सृष्टि को, आओ मेरे पास, कैसे जाएंगे, भटक जाएंगे। शरीर छोड़ने के बाद भी आत्माएं भटक जाती हैं, क्योंकि उनका अभ्यास बहुत काल का नहीं है। अंतकाल उनका ही अच्छा होगा जिन्होंने बहुत काल तक वो अभ्यास किया है। इसलिए एक रमणीक कहानी सुनाता हूं आपको। कहते हैं एक बहुत समझदार सेठ जी थे, और उन सेठ जी ने सुन रखा था कि अंतकाल कलयुग के अंदर केवल भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है। बहुत समझदार होने के कारण उनको ये आया कि अंतकाल में कौन सामने आएगा, बच्चे ही आएंगे। तो उनको तीन बच्चे हुए, तीनों का नाम उन्होंने भगवान के नाम पर रख दिया। एक का नाम राम रख लिया, एक का मोहन रख लिया, एक का कृष्ण रख लिया। और उनकी बुद्धि में यही था कि जब मेरा शरीर छूटेगा तो यही कोई ना कोई होंगे। राम कहूंगा तो भी मुक्ति मिल जाएगी, कृष्ण कहूंगा तो भी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि नाम से ही कलयुग में पार हो जाते हैं, सुन रखा था। तो जब उनके अंतकाल का समय आया, बिस्तर पर थे, सब बच्चों को पता चल गया बाबूजी अभी विदाई लेने वाले हैं, सब आ गए सामने। अब वो लास्ट में वही उनको याद था कि नाम लेना है, तो राम कहाँ है, राम खड़ा हो गया, बाबूजी मैं आपके सामने हूँ, कृष्ण वो भी सामने है, मोहन वो भी सामने, तीनों को देखा। और देख करके बस उनके बुद्धि में एकदम गुस्सा आया, तुम तीनों यहां बैठे हो तो दुकान पर कौन है? और जब दुकान पर कौन है कहा, प्राण निकल गए। गति हुई, तीनों सामने थे लेकिन अंत में याद क्या आ गया, दुकान याद आ गई। क्यों याद आई? क्योंकि बहुत काल तक बुद्धि तो दुकान में फंसी हुई थी, बिजनेस में लगी हुई थी, अंत कैसे अच्छा होगा? अगर बहुत काल तक राम का नाम लिया होता, कृष्ण का लिया होता, तो हो सकता है कि उस समय वो दुकान नहीं याद आती। तो अंत मत्ति सोगति, अगर अंतिम गति सदगति को प्राप्त करना है, इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे बहुत काल तक अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जब बहुत काल से अशरीरी बनने का अभ्यास होगा, आएगा अंत का काल, एक सेकेंड में आत्मा ऐसे निकलेगी जैसे बाबा कहते मक्खन से बाल निकल जाता है, कोई चीज खींचेगी नहीं, बहुत सहज रीति से आत्मा उड़ के बाबा के पास चली जाएगी। और अगर नहीं गई तो इसी वायुमंडल में भटकेगी, या तो जन्म लेना पड़ेगा, अंत समय का जन्म भी बहुत कष्टदायक होगा। और भटक गई, जन्म नहीं मिला, तो भी भटकने वाली आत्मा कितनी दुखी होती, परेशान होती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे बहुत समय से अभ्यास करो अशरीरी बनने का, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से अलग हूं, ये शरीर अलग है। तो यहां अभ्यास करने के लिए आप आए हो, घूमने फिरने मौज करने के लिए नहीं, लेकिन एक अच्छा अभ्यास, अच्छा अनुभव करना कि मैं आत्मा, इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है। जितना इस कर्म इंद्रियों के भान को भूलते जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, वो हल्की चीज कहां जाएगी? कोई भी हल्की चीज हो, हवा में उड़ाओ तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? तो जब आत्मिक स्वरूप में आप स्थित होंगे तो आत्मा का स्वरूप भी हल्का है, लाइट है, और हल्का भी है। कोई भी बोझ नहीं, सब बोझ बाबा को दे दो, कुछ भी है, घर का है, बच्चों का है, परिवार का है, ये सब सेवा साथी हैं, संबंध मिले हैं, बाबा तेरे हैं। और इतना लाइट होकर के मैं बाबा की, बाबा मेरा, हल्के होकर के बाबा से बातें करो, रू रिहान करो, चलो फिरो, ऐसे लगे जैसे बॉडी में नहीं है, हल्के फरिश्ते रूप में चल रहे हैं। अब वो फरिश्ता स्थिति बनते बनते बीच में अशरीरी बन जाओ। अगर एक घंटे दो घंटे में एक मिनट उसे स्टेज का अनुभव कर लिया, आप स्वतः सहज निरंतर योगी बन जाओगे। योग लगाने की मेहनत नहीं लगेगी, आत्मा कर्म इंद्रिय जीत बन जाएगी, मालिक बन जाएगी, जो देखना वही देखेगी, जो बोलना है वही बोलेगी, जो सुनना है वही सुनेगी, कोई भी आकर्षण उस आत्मा को अपनी तरफ खींच नहीं सकती, टाइटनेस समाप्त हो जाएगी, हल्की बन जाएगी। तो इसलिए सब बाबा के बच्चों को अभ्यास करना है अशरीरी स्टेज का। अशरीरी स्टेज ऐसा नहीं, कोई कोई यहां अभी भी अशरीरी बैठे हैं निंद्रा देवी की गोदी में। थोड़ा अलर्ट होकर के योग करना, बहुत जरूरी है अलर्ट होना, नहीं तो बाबा कहता है आप बच्चे अगर आंख बंद करके बैठे और मैं सामने वरदान देने आ जाऊं तो भी मैं वापस चला जाऊंगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए सब बाबा के बच्चों को बहुत अलर्ट होकर के एकदम जागृत अवस्था में अपने स्वस्वरूप को देखो, स्वधर्म में स्थित हो जाओ, स्वदेश में पहुंचो, स्वपिता से बातें करो, उनकी शक्ति लो, उनकी सकास लो, इस स्थिति स्टेज से, विदेही स्टेज से आप विक्रमाजीत बन जाएंगे, बहुत स्वच्छ पावन आत्मा बन जाएगी, सरल संस्कार स्वभाव बन जाएंगे, बहुत तेजी नेचर हो जाएगी, स्वभाव में पवित्रता, स्वच्छता, निर्मलता, सब संस्कार दिव्यता आ जाएगी। ठीक है, तो चलो अभी हम सब 5 मिनट के लिए इस शरीर भान से अलग हो जाएं, अशरीरी स्टेज में बैठें।